आज का प्रातः क्लास है 11 सितंबर 1968 रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, पहले ही वाक्य में रूहानी बाप रूहानी बच्चे की याद क्यों दिलाते हैं? जैसे ड्रिल कराते हैं तो कहते हैं अटेंशन प्लीज, ऐसे ही बाप याद दिलाते हैं कि अगर देह की भान में बैठे हैं तो अटेंशन प्लीज, अपन को स्टार आत्मा समझो। मैं आत्मा स्टार के रूप में बाप का बच्चा हूं और मेरा बाप स्टार है जिसका बड़ा रूप शिवलिंग पूजा जाता है। तो रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, सबसे तो नहीं पूछ सकते, एक से पूछते हैं। जैसे कि ये नलिनी बेटी है, इससे पूछते हैं कि यहां बैठी बैठी क्या कर रही हो, कहती याद में बैठी हूं। किसकी याद में बैठी हो? बोला बाप की याद में। अच्छा, सिर्फ बाप की याद में बैठी हो या और भी कुछ याद करती हो? बाबा ने फिर दो चार से पूछा, बोला याद से विकर्म तो विनाश होंगे और क्या याद करते हो? याद में बैठी हो ये तो ठीक है, क्योंकि बाप के घर जाना है, ये तो बुद्धि का काम है कि हम आत्माओं को अभी घर जाना है। ये बारूद के ढेर पर खड़ी हुई दुनिया खलास होने वाली है, तो घर जाना है और फिर क्या करना है? क्या फिर वहां घर में जाकर के बैठ जाना है? विष्णु को सुदर्शन चक्र दिखाते हैं ना, तो साबित होता है कि जितना जितना हम बीज रूप आत्मिक स्टेज में टिकेंगे उतना हमारा सुदर्शन चक्र फिर ताजा बेगा। जैसे बीज विस्तार को पाकर के वृक्ष बन जाते हैं ना, ऐसे ही हम आत्मा जितना प्रैक्टिस करेंगी इस तार स्वरूप में टिकने की, उतना स्वतः ही मनन चिंतन मंथन चलता जाएगा। विष्णु को सुदर्शन चक्र की याद दिखाते हैं ना, ये यादगार तुम्हारा है स्व माने आत्मा, चक्र माने 84 का चक्र, दर्शन माने देखना, अर्थात स्वदर्शन चक्र माना अपनी आत्मा के 84 के चक्र को मनन चिंतन मंथन करके देखना कि मैं आत्मा चारों युगों के चक्र में कहां कहां कब कब क्या क्या पार्ट बजाती हूं। मुझे आत्मा ने पूरे चक्र में कितने जन्म लिए हैं, तो ये सुदर्शन चक्र का अर्थ बाप ने समझाया है, स्वार्थात आत्मा का दर्शन हुआ, 84 के चक्र का दर्शन हुआ, तो वो चक्र बुद्धि में फिर आना पड़े। तुम जानते हो कि हम आत्मा 84 का चक्र लगाकर लास्ट में अपने घर जावेंगे। जो आत्माओं का घर, सो आत्माओं के बाप का घर, फिर वहां से आवेंगे, नए चक्र में पार्ट लगाने के लिए, सतयुग में पार्ट बजाने में आवेंगे ना, फिर 84 का चक्र लगावेंगे। तो विष्णु को कोई 84 का चक्र होता नहीं है कि कोई उंगली में उनके चक्र लगा हुआ है, वो तो सतयुग का देवता है, सतयुग में मनन चिंतन मंथन करने की दरकार ही नहीं। ये 84 का चक्र तुमको घुमाना है, विष्णुपुरी कहो, लक्ष्मी नारायण की पुरी कहो, अथवा उठे स्वर्ग कहो, विष्णु कहा ही जाता है जिस आत्मा में विषय विकार का नाम निशान न हो, नो विष्णु। स्वर्ग भी कहा जाता है, ग माने गया, स्व माने स्व स्थिति, आत्मिक स्थिति, आत्मिक स्थिति में सदा के लिए चला जाए, रिंचक मात्र भी देहभान ना आवे, तो कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है, दुनिया में सभी की ग्लानि होती है, देवताओं की भी ग्लानी होती है, बड़े बड़े महात्माओं, पंडितों, आचार्यों, धर्म पिताओं की भी ग्लानी होती है, लेकिन स्वयं स्थिति में टिकने वाले लक्ष्मी नारायण की कोई ग्लानी नहीं होती है। भारत में तो घर घर में सत्यनारायण की कथा गाई जाती है। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राजी था, अगर कोई कहते हैं कि राधे कृष्ण का राजी था तो भूल करते हैं। राधे कृष्ण तो उनके बचपन का नाम है, राधे कृष्ण का राज्य होता नहीं है। भक्त लोग गाते भी है, हे कृष्ण नारायण वासुदेव, जो कृष्ण है बचपन में वो ही नारायण है, परंतु कृष्ण का बचपन पूजा जाता है और नारायण का बड़ा रूप पूजा जाता है। मंदिरों में भी बाल कृष्ण को दिखाते हैं, जब बड़े होते हैं तो लक्ष्मी नारायण का रूप दिखाया जाता है। ढेर के ढेर बिरला मंदिर बने हुए हैं जिनमें लक्ष्मी नारायण की मूर्ति रखी है। तो साबित होता है कि बचपन में राधा कृष्ण अलग अलग राजाई के थे, कृष्ण सूर्यवंशी और राधा चंद्रवंशी। दोनों ही प्रिंस प्रिंसेस थे, तो राजाई के मालिक तो स्वयंवर के बाद बनते हैं। तो ये जो विष्णु को चक्र दिखाया जाता है, ये चक्र तुम्हारा यादगार है। यहां जब बैठते हो तो सिर्फ शांति में नहीं बैठना है, नील में नहीं चले जाना है, वर्षा भी याद करना है। वर्षा है बैकुंठ की बात सही, स्वर्ग की बात सही कहो, इसलिए ये चक्र है और तुम सबको सुदर्शन चक्रधारी बनना है। जितना जितना आत्मा इस तार की स्मृति में टिकेंगी उतना उतना आत्मा स्वतः ही मनन चिंतन मंथन के विस्तार में जावेगी। और फिर बाप कहते हैं तुम लाइट हाउस भी हो, जैसे सर्कस होता है उसमें लाइट चारों ओर फिरती रहती है, तो तुम भी चमकती हुई आत्मा इस स्टार ही नहीं हो। उस स्टार से निकलने वाली ज्ञान की रोशनी को तुम चारों ओर चारों दिशाओं में फेंकते हो। तुम बोलता चलता लाइट हाउस हो, चैतन्य लाइट हाउस। तुम्हारी एक आंख में है शांति धाम और दूसरी आंख में है सुख धाम। कौन सी आंख में शांति धाम है? दो आंखें हैं, दाईं ओर की आंख और बाईं ओर की आंख। कौन सी आंख में शांति धाम है? है? है, त्रिमूर्ति में भी दिखाते हैं, दाईं ओर ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना और बाईं ओर शंकर द्वारा नरक का विनाश होता है। तो सब आत्माएं कहां जाती है? शांति धाम जाती है। तो तुमको दोनों को याद करना है, शांति धाम को भी याद करना है और सुख धाम को भी याद करना है। क्योंकि दुनिया में हर आत्मा क्या चाहती है? सुख और शांति चाहती है। सब दुखी और अशांत हैं। तो दुख पहले वो सुख पहले चाहती है या शांति पहले चाहती है? है? क्यों? सुख तो अच्छी चीज है, सुख में तो हंसते बहलते हैं, शांति क्यों चाहती है? जैसे कोई को 104 डिग्री बुखार चढ़ा हुआ हो, सारा बदन जल रहा है, जलन हो रही है, छटपटा रहा है, उसके सामने कोई रबड़ी मलाई रसगुल्ला राके रख दे तो देखने की भी दिल होगी, खाना तो दूर रहा, देखने की भी दिल नहीं होगी। क्या चाहिए? बुखार उतर जाए, शरीर में शांति आ जाए। तो ऐसे ही ये सारी दुनिया विकारों की आग में जल रही है। हर मनुष्य मात्र विकारों की आग में जल रहा है, चारों ओर आग लगी हुई है। कामाग्नि, क्रोधाग्नि, लोभाग्नि, कितना त्राही त्राही कर रहे हैं। सब चाहते हैं हमको शांति मिले। तो जो मिसाल दिया बुखार का, बुखार उतर जाता है, मन बुद्धि और शरीर शांत हो जाता है, फिर क्या 2, 4, 8, 10 दिन ऐसे ही पड़े रहेंगे शांत में? है? फिर काय की भूख लगती है, अच्छा अच्छा भोजन मिले, پتلی پتلی مونگ کی دال روز دیتے رہیں تو راس نہیں آئے گا. اچھا اچھا بھوجن چاہیے. تو پہلے آتما چاہتی ہے شانتی, پھر چاہتی ہے سکھ. تو باپ آ کر کے ہم کو دونوں پرکار کا ورثہ دیتے ہیں, شانتی کا ورثہ بھی دیتے ہیں اور ستیوگ روپی سکھ کا ورثہ بھی دیتے ہیں. تو دونوں کو یاد کرنا پڑتا ہے. یہ بھی جانتے ہو کہ یاد سے تو ہمارے جنم جنمانتر کے پاپ کٹتے ہیں, کس کی یاد سے ہے؟ بابا جو ساکار اور نراکار کا میل ہے اس کو یاد کرنے سے ہمارے جنم جنمانتر کے پاپ کٹ جاتے ہیں. کیونکہ ایک بابا ہی ہے جسے ہم کہتے ہیں شیو بابا, جو اس سرشٹی پر آتا ہے تو سدیو نراکاری اسٹیج میں رہتا ہے. نراکاری, نرویکاری اور نرہنکاری, تو پاپ ہونے کا سوال ہی نہیں. اور پاپ تو دیہ سے کیے جاتے ہیں کہ صرف آتما سے ہوتے ہیں؟ پاپ اور پنی دیہ سے ہوتے ہیں. تو باپ تو کبھی دیہ دھارن کرتا ہی نہیں. وہ دیہ دھارن کرے تو دیہ دھاری ہو جائے, باقی ہم سب بچے دیہ کو دھارن کرتے ہیں. اپنی اپنی دیہ کو بھی پور جنموں کے سنسکاروں کے انوسار دھارن کرتے ہیں. اور پرائی دیہ کو بھی آکرشن کرتے ہیں. کوئی نہ کوئی سمبندھوں کی رگ میں آ کر کے. وکاروں سے بسیبوت ہو کر کے جب سمبندھ سمسرگ سمپرک میں آتے ہیں تو دکھ دینے اور لینے کے نمت بن جاتے ہیں دیہ بھان کے کارن. ابھی باپ سکھاتے ہیں بچے تم تو روح ہو, تم آتما ہو, تم دیہ نہیں ہو. دیہ تو بناشی ہے. آج یہ دیہ دکھائی پڑ رہی ہے اور کل کل نہیں رہے گی, لیکن تم تو اویناشی آتما ہو. تو آتم کی استھتی میں ٹکنے سے اور باپ کو یاد کرنے سے تمہاری آتما کے جو دیہ دوارا کیے ہوئے وکرم ہیں وہ سب بھسم ہو جائیں گے. یاد کی اگنی ہے, یہ تیور اگنی چاہیے. جیسے سونا سادھارن اگنی میں ڈالا جاتا ہے تو کھاد نہیں نکلتی, जब तीखी अग्नि में डालते हैं तो सोने में से सारा कचरा बाहर चला जाता है। तो ऐसे ही तुम्हारी साधारण याद से पाप भस्म नहीं होंगे कि थोड़ा बाप को याद कर लिया, थोड़ा देह के संबंधियों को याद कर लिया। ऐसे विभिचारी याद करते रहेंगे तो तुम्हारे पाप भस्म होने वाले नहीं है। तीव्र याद चाहिए, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। तो फिर घर चले जाएंगे, आत्मिक स्थिति पक्की हुई और आत्मा उड़ेगी ऊपर। परंतु फिर चक्र को भी याद करना है। ये सारे 84 के चक्र का नाली तुमको ही है, क्योंकि तुमने ही 84 जन्म लिए हैं और आत्माओं ने 84 जन्म नहीं लिए। और आत्मा माने कौन? और कौन? तुमने कौन? जो सन्मुख मेरे बैठ करके बाप की नालिज सुनते हैं, अंदर से भी सन्मुख और बाहर से भी सन्मुख। नहीं तो ऐसे बहुत है कि देखने में तो सन्मुख आकर बैठ जाते हैं लेकिन अंदर से विपरीत संकल्प चलते रहते हैं, बाप समान संकल्प नहीं चलते, मन मना भव होकर नहीं बैठते, देहभान के कारण, अहंकार के कारण तंतना भव बनते रहते हैं, तंतनाते रहते हैं अंदर अंदर। तो ये कोई सन्मुख होना थोड़े ही हुआ। तो जो बच्चे मेरे सन्मुख होकर बैठते हैं वही बच्चे 84 जन्म लेते हैं, बाकी और धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बताया कि तुमने 84 का चक्र लगाया है, अब इस मृत्यु लोक में ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। जैसे वो भक्ति मार्ग की गीता में भी लिखा है मैं उस धाम का रहने वाला हूं जहां जाकर के आत्माएं फिर वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आती। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उन विद्वान आचार्यों ने तो इसका उल्टा अर्थ लगाई दिया कि आत्माएं परमधाम जाकर के फिर वापस कभी इस दुनिया में आती ही नहीं। परंतु बाप कहते हैं ऐसे नहीं है कि आत्माएं फिर कभी वापस आती ही नहीं, सदाकाल के लिए मुक्त हो जाती हो। नहीं, अगर ऐसे आत्माएं सदाकाल के लिए मुक्त होती रहे तो फिर ये सृष्टि तो क्या होगा, खलास हो जाएगी। ये सृष्टि तो अनादिकाल से चली आई है और अनादिकाल तक चलती रहेगी। अगर आत्मा की सदा काल के लिए मुक्ति हो जाए फिर तो आत्मा जैसे विनाशी हो गई, आत्मा का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। वास्तव में सदा काल के लिए आत्मा परमधाम में जाकर नहीं बैठ जाती, पुनः लौट करके आती तो है, परंतु इस पुराने तमो प्रधान मृत्यु लोक में नहीं आती है। कहाँ आती है? नई सतयुग की दुनिया में आती है। ये सिर्फ तुम बच्चों की ही बात नहीं है, जो 84 जन्म लेते हो, 84 का चक्र लगाते हो, उन विधर्मियों की भी बात है, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माओं की भी यही बात है कि वो भी परमधाम जाती तो है, परंतु इस दुखदायी तमो प्रधान दुनिया में लौटकर नहीं आती है। पहला जन्म हर आत्मा का सुख में होगा, दुख में नहीं हो सकता। माना एक जन्म की जीवन मुक्ति कम से कम हर आत्मा को रूहानी बाप से जरूर मिलती है, बाकी नई दुनिया को कहा जाता है अमर लोक। जो नई दुनिया बाप ही आकर के स्थापन करते हैं, और धर्म वाले धर्म पिताएं इस शक्ति रूपी मकान में आते तो हैं, अपना अपना धर्म स्थापन तो करते हैं, परंतु नई दुनिया नहीं बनाते। मृत्युलोक में आते और जन्म मृत्यु की दर बढ़ती ही जाती है। ये तो एक बाप ही है आत्माओं का, सर्व आत्माओं का पिता है, कि जब आते हैं तो नई दुनिया अमर लोक बनाकर जाते हैं। वो धर्म पिताएं तो मृत्युलोक में आते हैं और मृत्युलोक में ही खलास हो जाते हैं। मैं तो अमर लोक बनाकर जाता हूं, मृत्युलोक को क्या बनाकर जाता हूं? अमर लोक बनाकर जाता हूं। ऐसे नहीं कि वहां अमर लोक में नई दुनिया में कोई मरता नहीं है, शरीर नहीं छोड़ता है, शरीर तो छोड़ते हैं परंतु कोई तकलीफ नहीं होती है। बीमारी में बुढ़ापे में कोई शरीर नहीं छोड़ता है, पहले से ही साक्षात्कार हो जाता है कि अब ये शरीर की आयु पूरी हुई, अब जाकर के दूसरा जन्म लूंगा। इसलिए मरने की फीलिंग नहीं आती है। तुम तो सदैव जीते रहते हो, तुम्हारी आत्मा 21 जन्म तक जागृत रहेगी, जागती ज्योति रहेगी या बुझ जाएगी? जागती ज्योति रहेगी, इसलिए तुम अमर लोक के वासी बनते हो। और धर्म वाले अमर लोक में नहीं आते हैं, तो वहां तुम कब मरते नहीं हो? यहां तो देखो अचानक बैठे बैठे मृत्यु हो जाती है। वहां नई दुनिया में अचानक मौत, एक्सीडेंट होता ही नहीं कभी। बीमारी से मौत नहीं होती, सहज मृत्यु होती है। यहां तो मृत्यु भी होती है तो कितनी कठिनाई से होती है। हलकोरे आते हैं, घबड़े आते हैं। कोई मरना चाहता है? है? कोई नहीं मरना चाहता। और वहां खुशी खुशी ऐसे शरीर त्याग देते हैं जैसे कोई कपड़ा उतारता है। तो यहां देखो कितनी बीमारियां आदि होती हैं। वहां तो मरने का कोई डर नहीं क्योंकि अमर लोग हैं। तुम बूढ़े होते हो तो भी ज्ञान रहता है। हम जाकर के नए गर्भ महल में प्रवेश करूंगा, वहां गर्भ में भी आत्मा त्राही त्राही नहीं करती। और यहां तो गर्भ जेल होती है इस दुनिया में, नरक की दुनिया में। आत्मा गर्भ जेल में त्राही त्राही करती है, बाहर निकालो। वहां तो तुम खुशी खुशी से गर्भ महल से बाहर आते हो। अभी देखो सब गर्भ जेल में जाते रहते हैं। वहां तो गर्भ महल होता है। क्यों? क्योंकि वहां कोई पाप तो करते ही नहीं है। क्यों नहीं पाप करते हैं? क्योंकि वहां देवान होता ही नहीं। देवान से विकार आते हैं, विकारी बनने से फिर पाप करते हैं। वहां देवान ही नहीं तो कोई पाप भी नहीं होता। जो सजा भोगनी पड़े गर्भ जेल में, यहां तो बहुत पाप करते हैं जिस कारण घड़ी घड़ी मृत्यु होती रहती है। कम आयु में ही मृत्यु हो जाती है और फिर गर्भ जेल में जाते रहते हैं, सजाएं भोग करके बाहर निकलते हैं। रोते रोते जन्म होता है। माता को भी परेशानी और बच्चे को भी परेशानी। नई दुनिया में तो न माता को और न जन्म लेने वाले बच्चे को कोई दुख होगा। यहां तो इतने पाप करते हैं, घड़ी घड़ी गर्भ जेल में जाते रहते हैं और बाहर निकलते हैं, बड़े होते हैं फिर पाप करने लग पड़ते हैं। ये है ही पापात्मों की दुनिया। क्या ये रावण राज्य है? किसका राज्य? रावैते लोकान, जो लोगों को रुलाता है, ऐसे रावण का राज्य है। कोई बात कह के रुला देंगे, कर्मेंद्रियों से कोई कर्म करके रुला देंगे, मनसा वाचा कर्मणा कुछ न कुछ करते रहेंगे, रुलाते रहेंगे। फिर गर्भ में भी सजा भोगते, और बाहर निकलते हैं तो भी जेल में जाते रहते हैं, डबल जेल हो जाती है। कोई न कोई दुख तो बना ही रहता है और वहां तो कोई प्रकार का दुख होता ही नहीं, नाम निशान नहीं। तो बाप कहते हैं तुम तो अभी संगम युग में हो, क्या न पाप की दुनिया में हो और न पुण्य की दुनिया में हो, न नई दुनिया में हो न पुरानी दुनिया में हो, तो तुम्हारी एक आंख में शांति धाम और दूसरी आंख में सुखधाम रहना चाहिए। बल तुम जन्म जन्मांतर जप तप तीर्थ आदि करते आए हो, परंतु वहां ज्ञान तो होता ही नहीं है। बिना समझे बिना सोचे ऐसे ही करते आए अंधश्रद्धा पूर्वक, अंधविश्वास पूर्वक करते आए, इसलिए वो है ही भक्ति मार्ग। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, तो भक्ति मार्ग में जो भी कर्म कांड करते हैं क्या सोच विचार के करते हैं? है पिंडदान करने जाते हैं, कोई मर जाता है पिंडदान करने जाते हैं, क्या सोचते हैं कि पिंडदान करने से स्वर्ग में चला जाएगा? और फिर क्या सिंधु ही पिंडदान करें? इतने दुनिया में मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, पारसी हैं, वो तो पिंडदान नहीं करते। कितने कितने कर्मकांड करते हैं बिना सोचे समझे बिना विचारे। मंदिरों में ठिकानों में गिरजाघर में गुरुद्वारे में माथा टेकते रहते हैं, भक्ति मार्ग है ना? ये भक्ति किससे आती है, कौन सिखाता है भक्ति? रावण एक सिर वाला सिखाता है या अनेक सिर वाले रावण है? सिखाने वाले एक नहीं है, अनेक प्रकार के गुरु हैं। कोई क्या बताते कोई क्या बताते, अनेक मार्ग हो जाते हैं। अब सच्चा मार्ग तो एक ही होगा, तो दुनिया में जो बताने वाले हैं वो सब सत्य है क्या? जो बताने वाले हैं वो कोई पाप कर्म कर नहीं करते क्या? सब पाप कर्म करते हैं, तो पापी दूसरों को पाप करना ही सिखावेंगे या पुण्य कर्म करना सिखावेंगे? पाप ही बढ़ाते रहते हैं। इस दुनिया में कहते हैं भक्ति मार्ग में कि हम सत्संग करने जाते हैं, लेकिन सत्य है कौन? कोई छाती ठोक के कहेगा कि हम जो भी वाचा बोलते हैं, जो भी वाचा बोली है, जो भी वाचा बोलेंगे वो सत्य ही बोलते हैं, कहेगा? कोई ऐसा है जो कहे कि कर्मेंद्रियों से जो भी हम कर्म करते हैं वो हमारा किया हुआ कर्म सत्य है, کوئی کو دکھ دینے والا نہیں ہے. کہے گا کوئی؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. تو اس دنیا میں کوئی سخت نہیں ہے, یہ ہے ہی جھوٹ کی دنیا. دھندا لگا پڑا ہے یہاں. کیا کوئی دھندا ایسا نہیں ہے جس دھندے کو سچائی سے کر کے کوئی کروڑ پتی بنا ہو. جھوٹ ہے لینا, جھوٹ ہے دینا, جھوٹ ہے بھوجن, جھوٹ چبینا. سارے ہی تو جھوٹے ہیں, سارے ہی بیچاری ہے. کوئی کی اندریوں میں ست نہیں ہے. تو پھر ست کہاں سے آوے؟ جھوٹ کی دنیا میں جھوٹ ہی جھوٹ. تو باپ ہم بچوں کو بتاتے ہیں کہ بھکتی مارگ میں بھل کہتے ہیں ست سنگ, لیکن ست سنگ نہیں ہے. کیا ہے؟ سب لت سنگ ہے. ایک دوسرے کو لات مارتے رہتے ہیں. یہ تو ایک ہی باپ ہے جو آتماؤں کا باپ ہے, جو کبھی جنمن کے چکر میں نہیں آتا ہے, ابھوکتا ہے, نہ پاپ بھوکتا ہے اور نہ پنیہ بھوکتا ہے. جنمن کے چکر میں نہ آنے کے کارن وہ ہمارے 84 کے چکر کو جانتا ہے. اور کوئی نہیں جانتا. سب اپنے پورجنوں کی بات کو بھول جاتے ہیں. کوئی تو یاد رہتا ہے؟ اچھا یاد بھی رہے تو ایک دو چار جنموں کو بتاویں گے؟ پورے 84 کے چکر کو تو کوئی بتا نہ سکے. تو وہ ایک ہی ستیہ ہے جو ہم کو آ کر کے سچ کھنڈ کا راستہ بتاتے ہیں اور جھوٹ کھنڈ سے نکالتے ہیں. بتاتے ہیں کہ اس بھکتی مارگ سے تم کو کوئی مکتی نہیں ملتی. بھکتی مارگ سے تم اس دنیا سے چھٹکارا نہیں پاتے ہو. اور نہ تمہیں اس چھٹکارے پانے کی کوئی یکتی ملتی ہے. بل پنڈت ہیں, ودوان ہیں, آچاری ہیں, بات بات کے کرم کانڈ سکھاتے رہتے ہیں, یہ کرو وہ کرو وہ کرو, لیکن کوئی کی بھی یکتی کام نہیں کرتی. 2500 برس کی ہسٹری تمہارے پاس موجود ہے. دنیا نیچے گرتی آئی ہے یا دنیا کی مینٹلٹی اوپر اٹھی ہے؟ نیچے گرتی گئی. ابھی باپ تم کو ایسی یکتی بتاتے ہیں کہ تم تمو پردھان سے ستو پردھان بن سکتے ہو. اور یہ یکتی کوئی بھی سادھو سنت مہاتما نہیں جانتے ہیں. سنا ہے کرشن بھگوان واچ کیا کہتے ہیں؟ دیہ سہت دیہ کے سبھی دھرم چھوڑ ماں میں ایکم یاد کرو. ارے کرشن کو دیہ نہیں تھی کیا؟ نہیں تھی. देह थी, तो जिसको खुद ही देह है विदेही तो नहीं है, खुद ही देह धारण करता है, देह में बुद्धि धरी हुई है, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी नहीं है, वो सदा शिव होगा। शिव माने कल्याणकारी, वो सदैव कल्याणकारी हो सकता है? है नहीं हो सकता। फिर दिखाते भी हैं, कृष्ण भगवान ने कौरवों का कल्याण किया, किया किसका किया? पांडवों का कल्याण किया, और कौरवों का विनाश हो गया। तो सबका भगवान सबका कल्याणकारी है या कोई का कल्याणकारी? कोई का कल्याणकारी, सबका कल्याणकारी है। तो सबका कल्याणकारी है वो ही शिव परमात्मा है, वो शिव बिंदी का नाम है, वो ज्योति बिंदु शिव है। फुदक फुदक के कल्याण नहीं करता, बिंदी करती है फुदक फुदक के कल्याण नहीं। कैसे कल्याण करता है? कृष्ण में आकर के कल्याण करता है, कृष्ण के अंतिम जन्म दादा लेखराज में आकर दुनिया का कल्याण करता है? नहीं करता। वो कौन है मीडिया जिसमें आकर सारे विश्व का कल्याण करता है? वो मीडिया है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। 33 करोड़ देवताओं में से एक देवता भी ऐसा नहीं है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाए। दुनिया के बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य महात्माएं धर्मात्माएं धर्मपिताएं एक भी ऐसा नहीं है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाए। वो एक ही है जिसे कहते हैं देव देव महादेव। देवताओं में बड़े से बड़ा देवता, बल बनाने वाला तो शिव ही है। क्या देवता बनाने वाला कौन है? है मनुष्य को देवता बनाने वाला शिव ही है, परंतु बनते तो अपने अपने पुरुषार्थ से है ना, कि वो सबके ऊपर छुमन तरकाली कर देता है, है? नहीं, भगवान बाप आकर के जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई को जो जास्ती पढ़ता है, मनन चिंतन मंथन करता है, प्रैक्टिस करता है, दूसरों की सेवा भी करता है, स्वयं धारण करता है और कराता है, वो प्राप्ति भी ज्यादा करता है, इसलिए उसको देव देव महादेव कहा जाता है। उस मुकर्रर रथ में आकर के भगवान बाप शिव सारे संसार का कल्याण करते हैं। पांडव हो, यादव हो, कौरव हो, सूर्यवंशी हो, चंद्रवंशी हो, इस्लामी हो, बौद्धी हो, क्रिश्चियन हो, नास्तिक हो, 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं सब तृप्त हो जाती है, कोई भी अतृप्त नहीं रहती, सबको अपना अपना पार्ट प्यारा लगता है, सबको मुक्ति मिलती है और सबको जीवन मुक्ति मिलती है। तो उसको कहेंगे भगवान। पार्शियलिटी करने वाले को भगवान नहीं कहा जा सकता। है तो ये गीता के अक्षर कि देह के सब धर्म छोड़ माम एकम याद करो। तो जो कहने वाला है मुझे एक को याद करो, वो स्वयं देहधारी होगा, उसकी देह में बुद्धि धरी होनी चाहिए, देहधारी होगा या निराकारी निर्विकारी निरहंकारी होगा, है स्वयं होना चाहिए उसको वैसा, तब दूसरों को बना सकेगा। ये अक्षर गीता के हैं, ज्ञान के गीत को ही गीता कहा गया है। भगवान आकर के यही गीत सुनाते हैं, डायरेक्ट सुनाते हैं। वो विद्वान पंडिताचारी तो गीता पढ़कर के सुनाते हैं और भगवान डायरेक्ट सुनाते हैं। ऐसे नहीं कहते हैं कि तुम ऐसे चौकड़ी मार करके बैठो, आसन लगाओ, प्राणायाम करो, सांस चढ़ाओ, ऐसे कहते हैं नहीं। कहते हैं मैं तुम्हें सहज राजयोग सिखाने आया हूं, कोई तकलीफ नहीं देता हूं। सिर्फ पढ़ाते हैं, भगवान ऐसे ज्ञान सुना करके गया था। जब वो पतितों को पावन बनाने आया था, बाकी भक्ति मार्ग में ये भूल हो गई है कि गीता में परमपिता परमात्मा शिव के बदली कृष्ण का नाम देहधारी का डाल दिया है। अब कृष्ण की आत्मा तो अंतिम जन्म में भी देह के बंधन से मुक्त हो पाती है क्या? है देह के बंधन से मुक्त हुई नहीं, और ही सूक्ष्म शरीर का बंधन बंध गया। तो सूक्ष्म का बंधन ज्यादा तीखा होता है या स्थूल शरीर का बंधन ज्यादा तीखा होता है? सूक्ष्म में और ही ज्यादा ताकत होती है। तो मैं बाप के रूप में जब आता हूं तो कृष्ण का रथ नहीं लेता, मैं तो मुकर्रर रथ में आता हूं। मुकर्रर किसे कहते हैं और टेम्परेरी किसे कहते हैं? है? जो आदि में भी हो, मध्य में भी हो और अंत में भी रहे, उसको कहते हैं मुकर्रर। اور جو آگ میں ہو اور مدھ میں چلا جائے تو وہ ہوا ٹیمپریری. تو دیکھو کرشن کو تو انتم جنم میں اپنا رتھ ہوتا ہے اور میرے کو تو اپنا رتھ نہیں ہوتا ہے. وہ کرشن تو خود ہی دیہداری ہے. دیہ میں بدھی دھری ہوئی ہے تو دیہ کا ایک انگ ہے ہارٹ. ہارٹ فیل ہوتا ہے. میں جو یوگ سکھلاتا ہوں اس میں کب کوئی کا ہارٹ فیل نہیں ہو سکتا. دنیا لوٹ پوٹ ہو جائے لیکن ہارٹ فیل نہیں ہو سکتا. تم بچے آگے چل کر کے دیکھیں گے کہ جو بڑے بڑے ملٹی ملینائر ہیں, بڑی بڑی جن کی ملیں ہیں, ملٹی اسٹوری بلڈنگز بنائے بیٹھے ہیں, بڑے بڑے ارب پتی کھرب پتی ہیں. ڈھیر کے ڈھیر ویمان ہیں. جب وناش ہوگا تو کیسے ہارٹ فیل ہو کر کے مرتے ہیں. ان کی ساری پلاننگ دھری رہ جائے گی اور اچانک مر پڑیں گے. باپ کہتے ہیں شاستروں میں جو نام ہیں وہ تو کام کے آدھار پر رکھے گئے ہیں نا. جیسا جیسا کام کیا ویسے ویسے نام دھرے گئے. انہوں نے بھگوان کا نام رکھ دیا ہے کرشن. گیتا کا بھگوان کرشن. کرشن کا ارتھ کیا ہوتا ہے؟ کرشن آکرشن کرنا, کھینچنا. تو یگی کے آدمی میں 300-400 جو بھاگ کر کے آئے وہ کیا دادا دیکھ رہا جی نے کھینچا ہے؟ اچھا چلو بھکتی مار کے شاستروں میں 300-400 کا گائن نہیں ہے, کتنوں کو بھگانے کا گائن ہے؟ 16,000 کو بھگانے کا گائن ہے. تو وہ تو 300-400 کے بعد ہی شریر چھوڑ گئے. 16,000 کہاں کھینچے؟ سولہ ہزار گوپ گوپیاں جنہیں دنیا والے اپنی طرف کھینچتے رہے اور بھگوان نے اپنی طرف کھینچ لیا. زور زبردستی کر کے تو نہیں کھینچ لیا. جیسے دنیا میں ہاتھ پکڑ کے ٹھٹھیر لے جاتے ہیں ایسا تو کچھ نہیں کیا. کوئی کو کڈنیپ تو نہیں کیا. تو یہ بھگوان کے لیے گائن ہے. اس لیے مرلی میں بولا ہے کہ یگ کے آدمی بھی جو 300-400 بھاگے وہ کرشن کی یہ اب دادا لیکھ راج برہما کی کہانی نہیں ہے. وہ ہے پرجاپتا برہما کی کہانی. جس مقرر رتھ میں آدھ میں بھی آیا تھا اور اسی آتما کے مقرر رتھ میں انت میں بھی آ کر کے کتنی گوپ گوپیوں کو آکرشت کرتا ہے؟ 16,000 کو آکرشت کرتا ہے. یہ 16,000 وراٹ پرش کی نسے ناڑیاں ہیں. بھگوان کا وراٹ روپ دکھاتے ہیں نا. 8,000 نسے ہیں گندا خون بہانے والی, اور 8,000 نسے ناڑیاں ہیں سوچھ خون بہانے والی. دونوں پرکار کی نسے ناڑیاں جو سنکلپوں کا خون بہانے والی ہے وہ کون سے کیندر بندو میں اکٹھی ہوتی ہے؟ شریر میں کوئی انگ ہے جہاں 16,000 نسوں ناڑیوں کا کیندر بندو ہے؟ نابھی. بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ نابھی کاٹتے ہیں. جو 16,000 نسے ناڑیوں کا پرانا بندھن ہے وہ کٹ ہو جاتا ہے. تو وہ تو جڑ نسے ناڑیاں ہیں جن میں استھول خون بہتا ہے. یہ ہیں آتما روپی چیتنیہ نسے ناڑیاں جو وراٹ پرش کی نسے ناڑیاں ہیں. تو جس کی ہیں وہ ہی آکرشت کرے گا, یہ کوئی دوسرا آکرشت کرے گا؟ جس کی ہیں وہ ہی آکرشت کر سکتا ہے. اس لیے کرشن کی نسے ناڑیاں ہیں, کرشن بھگوان نے آکرشت کیا, یہ رنگ بات ہے. وشنو کے چتر میں وشنو کی جو چار بھوجائیں دکھائی جاتی ہے ان میں کرشن والی آتما تو ماتر ایک سہیوگی بھوجا ہے. تین اور بھی سہیوگی بھوجائیں ہیں, چاروں ہی سہیوگی بھوجائیں چار آتمائیں ہیں. وہ چاروں ہی جڑتمئی بدھی والی ہے. ان کو چلانے کا کام, ان کو کھینچنے کا کام کون کرتا ہے؟ بھوجاؤں کو چلانے والا کون؟ ارے اندریوں کو چلانے والا کون؟ آتما. تو جو چار بھوجائیں دکھائی گئی ہے وہ تو کرشن اور کرشن کی سہیوگنی رادھا, رائٹ ہینڈس, اور وشنو کے دو لیفٹ ہینڈ. ایک ہے اوپر کی بھوجا شنکھ, شنکھناد کرتی ہے, جان کا شنکھ پھونک دیتی ہے, اور دنیا میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے. دوسری لیفٹ ہینڈ کی نیچے کی بھجا ہے, کمل پھول سمان جیون بتانے والی, کیچڑ کی دنیا میں رہتی ہے کمل کے سمان, اور من بدھی سے ایک دم اوپرام جگدمبا سو مہاکالی. یہ چاروں بھجائیں, ان کو چلانے والا کون, کوئی ہے یا نہیں ہے؟ وشنو جو پارٹ دھاری کہا جاتا ہے وہ کوئی شیو نہیں ہے. شیو وشنو بنتا ہے کیا؟ نہیں, شیو تو وشنو سوروپ بنانے والا ہے. تو وشنو میں جو چار بھوجاؤں روپی آتمائیں ہیں ان کو چلانے والا کون ہوا؟ وہی رام والی آتما جو شنکر کے تیسرے نیتر کے روپ میں بدھی کی یادگار ہے. بدھ روپی تیسرا نیتر وہ چاروں ہی بھجاؤں کو چلانے والا ہے. جس میں پرویش کر کے شیو ڈائریکشن دیتا ہے بچوں کو, اپن کو آتما سمجھ, مجھے باپ کو یاد کرو, مام ایکم یاد کرو, کوئی دوجم یاد نہ کرو. اوم شانتی.